भगवते वासुदेवाय
ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय
नारायणं नमस्कृत्य
नारायणं नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमं
नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं
देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जयमुदीरये
ततो
नष्टप्रायेषु भद्रेषु
नष्टप्रायेषु भद्रेषु
नित्यं भागवत सेवया
नित्यं भागवत सेवया
भगवत्युत्तम श्लोके
भगवत्युत्तम श्लोके
भक्तिर्भवति नैष्ठिकी
भक्तिर्भवति नैष्ठिकी
ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम चौथा स्कंध 21वां अध्याय महाराज पृथु द्वारा उपदेश श्लोक संख्या 32 विनिर्दुत
अशेष
मनः मलः
पुमान
असंग
विज्ञान
विशेष
वीर्यवान
यत्
अंग्रे
मूले
कृतकेतनः
पुनः
न
संस्कृतिं
क्लेश
वहां
प्रपद्यते
विनिर्धुताशेष मनोमलः पुमान
असंग विज्ञान विशेष वीर्यवान
यदंग्रिमूले कृतकेतनः पुनः
न संस्कृतिं क्लेशवहां प्रपद्यते
विनिर्धुताशेष मनोमलः पुमान असंग विज्ञान विशेष वीर्यवान
यदंग्रिमूले कृतकेतनः पुनः
न संस्कृतिं क्लेशवहां प्रपद्यते
विनिर्धुताशेष मनोमलः पुमान
असंग विज्ञान विशेष वीर्यवान
यदंग्रिमूले कृतकेतनः पुनः
न संस्कृतिं क्लेशवहां प्रपद्यते
विनिर्धुताशेष मनोमलः पुमान
असंग विज्ञान विशेष वीर्यवान
यदंग्रिमूले कृतकेतनः पुनः
न संस्कृतिं क्लेशवहां प्रपद्यते
विनिर्धुताशेष मनोमलः पुमान
असंग विज्ञान विशेष वीर्यवान
यदंग्रिमूले कृतकेतनः पुनः
न संस्कृतिं क्लेशवहां प्रपद्यते
विनिर्धुताशेष मनोमलः पुमान
असंग
విజ్ఞాన విశేష వీర్యవాన్
అసంగ విజ్ఞాన విశేష వీర్యవాన్
యదంగ్రిమూలే కృతకేతనః పునః
యదంగ్రిమూలే కృతకేతనః పునః
న సంశృతిం క్లేశవహాం ప్రపద్యతే
న సంశృతిం క్లేశవహాం ప్రపద్యతే
ऊपर देवनागरी में पहले पाद में पुमान लिखा है तो हमने पुमान क्यों बोला और अगला दूसरा जो पद है वो न संग विज्ञान न से शुरू होता है हमने अ से शुरू क्यों किया हाँ बोल बोल हाँ कैसे हमको पता चलेगा कि कब इसको कैसे बोलना है सरल उपाय क्या है इसके लिए
शब्द
शब्दार्थ को देखो शब्द भेद को प्रभुपाद ने दिया है ना नीचे शब्दार्थ में तो मनह मलह और पुमान पुमान मतलब मनुष्य तो पुमा बोलेगा तो कोई अर्थ नहीं है इसका पुमा तो पुमान तो वो न क्योंकि ये दो एक पाद में अक्षर लाइन में होते हैं परंतु इसके लिए दो में किया है इसीलिए ऐसे लिखा गया है फिर न उधर आ गया तो ये असंग अ से शुरू हो गया दूसरा लाइन ठीक है
इंग्लिश में मैंने पुनर लिखा पुनर
तो पुनर हम ऐसे भी कह सकते हैं परंतु असल में है पुनः शब्द भेद में देखोगे तो पुनः तो पुनर् भी कहना गलत नहीं है और पुनः भी ठीक है लेकिन एक ही साथ बोलते होंगे बिना कोई रुकावट के तो फिर पुनर् बोलना चाहिए लेकिन जब हम रुक जाते हैं तो फिर पुनः बोल सकते हैं तो ये शब्द क्या है पुमान है पुमान है कैसे है
पुमान
तो हलंत नीचे इसका क्या अर्थ होता है एक बार हमने बताया था याद है सबको अक्षरों का कैसे वेद करते हैं
स्वर नहीं आता है हमारे उसके साथ
स्वर नहीं आता है केवल व्यंजन आधा व्यंजन वो है क्या बोर्ड है फिर छोटा सा भी चलेगा ये नया मार्जन का ये है कि पुराना ही है
कल का
पीछे वाला कर दो पीछे इसके ऊपर लिख सकते हैं
नहीं
और वो चौक है क्या
चौक है
ऊपर थोड़ा ताकि सबको दिखाई पड़े देखने के लिए है
स्वर क्या है इत्यादि
आप सब जानते हैं बराबर
व्यंजन क्या है तो परंतु ये क है क्या वास्तव में
ये क बोलते हैं ना इसके साथ भी व्यंजन स्वर होता है कोई व्यंजन अपने आप नहीं रह सकता किसी भी शब्द में किसी भी अक्षर में व्यंजन होना आवश्यक है यदि व्यंजन नहीं है या स्वर नहीं है तो फिर वो अपूर्ण हो जाता है अपने आप में उसको अक्षर नहीं मानते हैं
तो ये क क्या है
दिखाई दे रहा वहां से का
Yeah. समझ गए। जब हम ये क कहते हैं ये वास्तव में क और अ, तो ये आधे क के बराबर है। जैसे कोई भी एक शब्द दीजिए जिसमें व्यंजन होता है, स्वर नहीं है उसमें, या आधा जो व्यंजन है, कोई भी एक शब्द बोलिए। व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति, तो कितने अक्षर हो गए इसमें?
दो।
परंतु देखो ये पूर्ण है, इसमें पूरा नहीं है। यदि यदि इसमें अ होता तो कैसे होगा, वैयक्ति हो जाता, परंतु इसमें व्य केवल व है, इतना ही है। और फिर या। तो ये एक अक्षर हो जाता है। और क्ति, यहाँ पे क में अ नहीं है, ये व्यंजन है लेकिन इसमें स्वर नहीं। क्ता यदि होता तो इसको कैसे लिखते हम? क्ति लिखते, क्ति, पर ऐसा नहीं है। क्ति क्ति आधा है। क्या पूछने के लिए है कुछ?
ये भी
हाँ सब तो यहाँ पे शब्द क्या है? ऐसा है
नहीं?
हाँ कैसा है फिर? यदि ये नहीं होता है तो कैसे उच्चारण करते? पुमाना, न न होता, न और अ। परंतु यहाँ क्या है? केवल ये है, इसमें अ नहीं है। मान, जैसे हनुमान भगवान, वो भगवान ना नहीं है, हनुमान ना नहीं है, पुमान पुमाना नहीं है। परंतु ये नहीं होता तो अ का उच्चारण करते हैं, पुमान। इसलिए यहाँ पे नहीं है, लेकिन उच्चारण जैसे एक जैसे करते हैं, तो इसका उच्चारण क्या है?
राम।
इसका उच्चारण कैसे?
राम।
इसका
राम।
ये और इसका
राम।
तो सूक्ष्म अंतर है कि नहीं? राम इसमें क्या है? म है, अ नहीं है, इसमें स्वर नहीं है, अ नहीं है। राम कट कट जाता है, आधा व्यंजन, तो राम ये राम हल्का म आ नहीं, आ बोलेंगे तो ये हो जाए राम, राम रामा। दक्षिण भारत में अयो रामा बोलते हैं, बोलते हैं ना अयो रामा रामा। खैर तो ये समझना चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पे क्या? पुमा न, तो इसको यहाँ जोड़ दिया है। वैसे यहाँ होता तो इधर अलंक हो जाता इसका। जैसे यहाँ पे है वीर्यवान, देखो वीर्यवान न नहीं है, वीर्यवान कट गया उधर, और ये न इधर आ गया पुमान, तो फिर ये अ यहाँ पे जोड़ना चाहिए, क्योंकि ये इसमें यहाँ पे ऐसा नहीं है अलग, तो इसका मतलब क्या है? ये न प्लस अ है, तो पुमान में कैसा है न, ऐसा है ना, तो इसमें ये न हम लेते ऊपर है तो क्या रह जाता है इधर, रह जाता, इसलिए फिर असंग। ये सब महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि अ नहीं डालेंगे तो शब्द का अर्थ उल्टा हो जाएगा, संग के असंग के बजाय संग हो जाएगा, तो उल्टा हो गया ना अर्थ, इसलिए इन चीजों को थोड़ा समझना आवश्यक है। ठीक है,
जैसे कई हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करते हैं, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम,
भावग्राही जनार्दन कभी रामो रामो बोलते हैं बंगाल में, रामो रामो बोलते हैं तो प्रभुपाद बोलते हैं ये रामो कौन व्यक्ति है, ये नए कोई व्यक्ति कौन है रामो, रामो तो ऐसे नहीं है कोई, राम 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 हरे हरे। परंतु हिंदी में ऐसे, हिंदी मराठी में ऐसे भेद नहीं करते, हिंदी में ऐसे बोल देते हैं, इसलिए वो हिंदी मराठी गुजराती बंगला सबका अनुभव संस्कृत के ऊपर हम डाल देते हैं, तो संस्कृत उच्चारण भी उसी तरह से करते हैं, जैसे हिंदी मराठी बंगला गुजराती में बोलते हैं तो वही उच्चारण की पद्धति संस्कृत के ऊपर डालते हैं। ठीक है, विनिर्धुता
विनिर्धुता
विशेष रूप से धुला हुआ,
विशेष रूप से धुला हुआ,
अशेषा
अशेषा
अनंत
अनंत,
मनः मलः मानसिक चिंतन
मानसिक चिंतन
अथवा
मन का
संचित मल
संचित मल।
अच्छा, हिंदी में या मराठी में जब हम ऐसे बोलते हैं इसका उच्चारण कैसे करते हैं,
मन
मन
मराठी में देखो मन, हिंदी में भी
मन,
परंतु संस्कृत में कैसे उच्चारण करेंगे,
मना।
हम जब हिंदी मराठी में बोलते हैं उच्चारण ऐसे करते हैं मानो कि ये ऐसा है कि नहीं, परंतु वास्तव में शब्द ऐसा नहीं, शब्द न है पूरा, तो संस्कृत में बोलेंगे तो अकार अंत है, क्यों है ये है, इसलिए अंत कौन से अक्षर से होता है, से होता है मन, तो इस प्रकार से हिंदी मराठी में बोलना ठीक है, जब आप हिंदी मराठी में बात करेंगे तो जैसे बोलते हैं वैसे बोलिए, परंतु संस्कृत में जब बोलेंगे श्लोकों का तो मना बोलना चाहिए, मना बोलेंगे तो अलग हो जाएगा, मन बोलेंगे फिर भी अलग हो जाएगा। इसलिए यहां पर पुमान पुरुष असंग
असंग
उबकर
विज्ञान
वैज्ञानिक ढंग से
विशेष
विशेष रूप से
वीर्यवान
भक्ति योग से पुष्ट यत
जिसके
अंग्रि चरण कमल की मूले
जड़ में
कृतकेतनः
शरण में जाकर
पुनः
फिर
न
न
कभी नहीं
कभी नहीं
संस्कृतिम
संस्कृतिम
संसार को
क्लेशवहाम
कष्टों से पूर्ण प्रपद्यते
प्रपद्यते
ग्रहण करता है
ग्रहण करता है।
अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। पढ़ो
जब भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की शरण में आ जाता है तो उसका सारा अज्ञान या कपोल कल्पनाएं धुल जाते हैं और उसमें वैराग्य प्रकट होने लगता है। यह तभी संभव है जब वह भक्ति योग के अभ्यास से परिपुष्ट हो ले। एक बार भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेने पर भक्त कभी भी इस संसार में लौटना नहीं चाहता जो तीन प्रकार के तापों क्लेशों से भरा हुआ है। तात्पर्य, जैसा कि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिक्षाष्टक में कहा है, भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण महामंत्र का जप अथवा भगवान की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन द्वारा मनुष्य का मन क्रमशः समस्त प्रकार के मल से स्वच्छ हो जाता है। अनंत काल से भौतिक संगति में रहने से हमारे मनों में कूड़े का अंबार लग चुका है। इसका पूरा पूरा प्रभाव तब देखने को मिलता है जब जीवात्मा अपने को शरीर मान बैठता है और इस तरह देहात्म बुद्धि से वह प्रकृति के कठोर नियमों में बंद कर जन्म तथा मृत्यु के चक्र में पड़ जाता है। जब मनुष्य भक्ति योग द्वारा अपने को शक्तिशाली बना लेता है तो उसके मन का यह भ्रम दूर हो जाता है और उसे इंद्र तृप्ति अथवा इस संसार के प्रति कोई रुचि नहीं रह जाती। भक्ति का लक्षण है वैराग्य तथा ज्ञान। मनुष्य शरीर नहीं है, यह बोध ही ज्ञान है और वैराग्य का अर्थ है इंद्र तृप्ति के प्रति अरुचि। भव बंधन से विलग होने के ये दोनों मूल सिद्धांत भक्ति योग के बल पर फलीभूत हो सकते हैं। इस प्रकार जब भक्त भगवान के चरण कमलों की प्रेमा भक्ति में स्थिर हो जाता है तो शरीर त्याग के बाद वह इस संसार में पुनः नहीं आता, जिसकी पुष्टि भगवत गीता में भगवान द्वारा हुई है, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुना। इस श्लोक में आगत विज्ञान शब्द का विशेष महत्व है। जब मनुष्य अपने को शरीर नहीं मानता तो वह जो आध्यात्मिक अभिज्ञान प्राप्त करता है वह ज्ञान है और इसी की व्याख्या भगवद गीता में ब्रह्मभूत के रूप में की गई है। भौतिक संसार की बद्ध अवस्था में आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता क्योंकि मनुष्य अपनी भौतिक पहचान बनाए रखना चाहता है। भौतिक संसार तथा आध्यात्मिक संसार के अंतर का बोध ही ज्ञान है। ज्ञान प्राप्त करने अथवा ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त कर लेने पर अंततः भक्ति की प्राप्ति होती है, जिसमें मनुष्य को अपनी स्थिति तथा भगवान की स्थिति का पूरा पूरा ज्ञान हो जाता है। यहाँ पर यह बोध विज्ञान विशेष के रूप में व्याख्यायित हुआ है, अतः भगवान का कथन है कि मेरा ज्ञान ही विज्ञान है। दूसरे शब्दों में, जब मनुष्य परमेश्वर के वैज्ञानिक ज्ञान से युक्त हो जाता है तो उसका मोक्ष सुनिश्चित है। भगवद गीता में 9वें अध्याय दूसरे श्लोक में भक्ति के विज्ञान को प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम कहा गया है। मनुष्य भक्ति योग के द्वारा आध्यात्मिक जीवन में अपनी प्रगति को प्रत्यक्ष देख सकता है। अन्य योगों जैसे कर्मयोग, ज्ञान योग तथा ध्यान योग में वह अपनी उन्नति के विषय में सुनिश्चित नहीं हो पाता, किंतु भक्ति योग में उसे उसी प्रकार अपनी उन्नति का पता चल जाता है जिस प्रकार भोजन करने वाले को पता चल जाता है कि उसकी भूख तुष्ट हो गई। भोग तथा भौतिक संसार पर अधिकार करने की झूठी क्षुधा वासना तथा अज्ञान की प्रमुखता के कारण होती है। भक्ति योग से इन दोनों में कमी आती है और मनुष्य तत्वगुण में स्थित हो जाता है। इसको पार कर वह शुद्ध सत्व में पहुंच जाता है जो भौतिक गुणों से कलुषित नहीं होता। इस प्रकार स्थित होकर भक्त के सारे संदेह जाते रहते हैं। उसे यह पता रहता है कि वह इस भौतिक जगत में फिर से नहीं लौटेगा।
ओम ज्ञान तिलिरांतस्य ज्ञानांजन शलाकय तत्सुरुद्धितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च
श्रीरूपं
साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम्
साद्वैतं
सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं
श्रीराधाकृष्णपादान्
सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेषाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने
नमस्ते सारस्वतीदेवे
गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च
पतितानां
पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द
श्रीअद्वैतवासादि
गौरभक्तवृन्द
हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। अनुवाद को दोहराइए। जब भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के
चरण कमलों की
शरण में आ जाता है
तो उसका सारा अज्ञान
या कपोल कल्पनाएं
धुल जाते हैं
और उसमें
वैराग्य प्रकट होने लगता है।
यह तभी संभव है
जब वह
भक्ति योग के अभ्यास से परिपुष्ट हो ले। एक बार
भगवान के चरण कमलों की
शरण ग्रहण कर लेने पर भक्त कभी भी इस संसार में
लौटना नहीं चाहता।
जो तीन प्रकार के तापों
क्लेशों से भरा हुआ है।
यहाँ पर महाराज पृथु बतला रहे हैं कि भक्ति योग की शक्ति क्या है। भक्ति योग करने से सारे अन्य अच्छे गुण उत्पन्न हो जाते हैं। यस्यास्ति भक्तिर् भगवते किंचन सर्वे गुणैस्तत्र समासते सुरः। फिर हराम अभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथे नासति धावतो बहिः। जब भगवान के शरण में कोई भक्त जाता है और भगवान की भक्ति करता है तो स्वाभाविक रूप से उसके अंदर सारे अच्छे गुण प्रकट होने लगते हैं अपने आप ही। ऐसे बाह्य प्रयास न करने पर भी वो प्रकट होने लगते हैं। कौन से गुण? जो देवताओं में भी है, और केवल देवताओं की बात नहीं है। श्री जीव गोस्वामी पाद बताते हैं कि ये कृष्ण के अंदर जो गुण है वो प्रकट होने लगते हैं। परंतु कृष्ण में जितने गुण हैं और जिस मात्रा में हैं वैसे नहीं, परंतु जीव के अंदर बहुत कण रूप में, कण मात्रा में, लेश मात्र में गुण रहते हैं। वही गुण हैं जो भगवान के अंदर हैं। जैसे प्रभुपाद जी समझाते हैं कि समुद्र के जल के एक बूंद में भी वही गुण होते हैं जो समुद्र के संपूर्ण जल में होते हैं। क्यों? क्योंकि जल तो वही है, केवल मात्रा में और शक्ति में अंतर है। तो ठीक उसी प्रकार से शुद्ध जीव के अंदर ये सारे गुण रहते हैं, परंतु बद्ध अवस्था में जीव की ये गुण ढक जाते हैं, वो अप्रकट रहते हैं। तो भक्ति क्या चीज है? भक्ति कोई कृत्रिम आरोपण नहीं है जीव के ऊपर। ये भक्ति एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा जो जीव का वास्तविक आंतरिक स्वरूप है वो प्रकट हो जाता है, जो छुपा हुआ है वो प्रकट हो जाता है। केवल आवरण को हटाना है, बस यही होता है। जैसे कभी बारिश के मौसम में काले बादल आ जाते हैं आसमान में और वो सूरज को ढक लेते हैं, वैसे बादल सूरज को नहीं ढक सकते, क्योंकि सूरज अपने आप में तो बहुत प्रकाशमान है और वो बहुत दूर है, बहुत बड़ा है। सूरज के सामने बादल कुछ भी नहीं है। फिर भी हमारे दृष्टि से, क्योंकि बादल करीब है, निकट है, और सूर्य बहुत ज़्यादा दूर है। जैसे हमने यदि यहाँ पे हाथ रख लिया तो सूरज की रोशनी भी नहीं आएगी हमारे पास। इसका मतलब ये नहीं कि हमने सूरज को रोक लिया, सूरज तो है लेकिन दृष्टि हमारी हमने रोक ली। तो उसी तरह से बादल जब हमारे आँखों के और सूरज के बीच में रहते हैं तो सूरज की रोशनी घट जाती है, परंतु जब हवा का झोंका आता है तो फिर क्या होता है, वो बादल बह जाता है, चल उड़ के चले जाता है, फिर सूरज की रोशनी दिखाई पड़ती है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई नया सूरज उत्पन्न हो गया, पहले सूरज के अंदर रोशनी नहीं थी, अभी सूरज में रोशनी आ गई, ऐसा नहीं है। सूरज में प्रकाश पहले से भी था, अभी भी है, परंतु हम नहीं देख पा रहे थे। हमारी दृष्टि से सूरज का जो प्रकाश है वो हम तक पहुंच नहीं पा रहा था। ठीक उसी प्रकार से जब हमारे अंदर भौतिक गुणों का प्रभाव रहता है, सत्व रजस तमस, तब जीव के वास्तविक गुण प्रकट नहीं होते हैं। अच्छा आदिरस प्रभु, ये बताओ तीसरे स्कंद में कौन सा श्लोक है जिसमें भगवान बताते हैं कि जीव को किस जीव की शुद्ध चेतना कैसे ढकी हुई है काम से? अर्जुन जब पूछते हैं, क्या पूछते हैं? हाँ, कौन सा बोलो ब्रजेश प्रभु?
अर्जुन पूछते हैं अतः केन प्रयुक्त कामं
पापं चरति पुरुषः,
पापं चरति पुरुषः अनित्यं इति वासनेय बलादिव निमित्तः।
मतलब
ऐसा क्या है जो मुझे इच्छा हुए बिना भी बलपूर्वक लेके जा रहे पाप करने के लिए?
तो भगवान क्या बोलते हैं? काम एष क्रोध एष रजगुण समुद्भव महाशनम महापापमा विद्येनम यह वैरिणम। ये काम क्रोध लोभ हमारे सबसे बड़े वैर शत्रु है। और जब काम की परिभाषा या वर्णन भगवान कृष्ण करते हैं तो वो क्या कहते हैं कि किस प्रकार से जीव की चेतना ढक जाती है? तीन तुलनाएं दी गई हैं, उपमाएं दी गई हैं।
धूमेनावृते बहिर् यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेनेदम आवृतम्।
बहुत अच्छा। तो इसका शब्द भेद करके बताना।
धूमेनावृते बहिर् मतलब कि अग्नि जो है धुए से ढका हुआ है।
धूमेनावृत, धूमेन आवृत, आवृत मतलब ढका हुआ। किससे ढका हुआ? धूम, धूम मतलब
धुआं,
धुआं। हाँ, वहनी, वहनी मतलब अग्नि। जिस प्रकार से अग्नि धुएं से ढक जाता है, अभी आप सब रसोई घर में यहाँ सेवा करते हैं लकड़ी जलाते हैं तो लकड़ी जलाते आग भी होता है, लेकिन आग के साथ साथ धुआं भी है, तो अग्नि ढक जाता है धुआं के साथ। धूमे नावृत वहनी पहला, दूसरा
यथादर्शो मले न चा,
यथादर्शो मले न चा मतलब
जो आईना है
हाँ,
वो धूल से मलेना
हाँ,
मल से
मल, जैसे एक दर्पण होता है, आईना होता है, आरसा मंत्र ना मराठी में, उसके ऊपर जैसे धूल होता है, ये दूसरा दूसरी उपमा दी गई है। और तीसरा
यथोल बेना वृतो गर्भस,
यथोल बेना यथो गर्भ क्या मतलब,
जो गर्भ है वो बच्चा गर्भ में है तो वो उसको
ढक लेता है, तो जैसे बच्चा गर्भ में होता है तो गर्भ उसको ढक लेता है ना बच्चे को, अभी तक जब बच्चे का जन्म नहीं हुआ होता है तो माँ के गर्भ के अंदर रहता है, गर्भ से ढका हुआ रहता है बच्चा। तो ये तीन प्रकार के आवरण बताए गए हैं। पहला आवरण कौन सा है, अग्नि आवृत हो जाता है, आवृत हो जाती है कैसे, धुएं से। दूसरा दर्पण आवृत हो जाता है, धूल से। और तीसरा बच्चा आवृत हो जाता है, गर्भ से। तो इन तीनों में आवरण बढ़ जाता है या कम हो जाता है,
बढ़ते
जाता है। सबसे घना आवरण कहाँ है, गर्भ में, फिर उससे कम
दर्पण का,
और उससे कम अग्नि का। तो भगवान कृष्ण बताना चाहते हैं कि जीव वास्तव में शुद्ध है, पवित्र है, सच्चिदानंद है, परंतु भौतिक जगत का स्पर्श करके वो माया से ढक जाता है। तो ये माया का जो आवरण है जो शुद्ध जीव की चेतना को ढक लेता है, जीव के वास्तविक स्वरूप को ढक लेता है, जीव के वास्तविक पहचान को ढक लेता है, वो उसके अलग अलग श्रेणियां होती हैं, अलग अलग प्रकार होते हैं कि कितना ज्यादा मोटा ये आवरण है। तो जिस कौन से ऐसे 84 लाख योनियों में योनियां हैं जिनमें जीव की चेतना सबसे ज्यादा ढकी हुई है, ये भगवत गीता का वो श्लोक निकालो, भगवत गीता है किसी के पास, हाँ तो हिंदी में भी नाम देना, तो ये श्लोक खोल दो, भगवत गीता हिंदी में है, तो सबसे ज्यादा घना आवरण कौन से योनियों में होता है 84 लाख योनियों में से, वृक्षों में। और ऐसे थोड़े पत्थर भी होते हैं जो जीवित होते हैं, बहुत सारे पत्थर जीवित नहीं होते, थोड़े थोड़े पत्थर होते हैं जो जीवित होते हैं, परंतु उनकी जो चेतना है वो इतनी ज्यादा ढक गई है कि वो प्राय अचेतन जैसे ही होते हैं, और इससे कम ढकने वाले जिसकी चेतना थोड़ी बहुत खिली हुई है वो कौन है,
पशु पक्षी
जैसे प्राणी होते हैं, पशु होते हैं इत्यादि, और उससे कम फिर मनुष्य। अच्छा, इसका तात्पर्य पढ़ो इस श्लोक का
तात्पर्य। जीवात्मा के आवरण की तीन कोटियां हैं जिनसे उसकी शुद्ध चेतना धूमिल होती है। यह आवरण काम ही है जो विभिन्न स्वरूपों में होता है, यथा अग्नि में धुआं, दर्पण पर धूल तथा भ्रूण पर गर्भाशय। जब काम की उपमा धूम्र से दी जाती है तो यह समझना चाहिए कि जीवित स्फुल्लिंग की अग्नि कुछ कुछ अनुभव गम्य है। दूसरे शब्दों में, जब जीवात्मा अपने कृष्ण भावनामृत को कुछ कुछ प्रकट करता है तो उसकी उपमा धुएं से आवृत अग्नि से दी जा सकती है। यद्यपि जहाँ कहीं धुआं होता है वहाँ अग्नि का होना अनिवार्य है,
किंतु प्रारंभिक अवस्था में अग्नि की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं होती। यह अवस्था कृष्ण भवनामृत के शुभारंभ जैसी है। दर्पण पर धूल का उदाहरण मन रूपी दर्पण को अनेकानेक आध्यात्मिक विधियों से स्वच्छ करने की प्रक्रिया से समान है। इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि है भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन। गर्भाशय द्वारा आवृत भ्रूण का दृष्टांत असहाय अवस्था से दिया गया है, क्योंकि गर्भस्थित शिशु इधर उधर हिलने के लिए भी स्वतंत्र नहीं रहता। जीवन की यह अवस्था वृक्षों के समान है। वृक्ष भी जीवात्माएं हैं, किंतु उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसी योनि मिली है कि वे प्रायः चेतना शून्य होते हैं। धूमिल दर्पण पशु पक्षियों के समान है और धूम्रक से आवृत अग्नि मनुष्य के समान है। मनुष्य के रूप में जीवात्मा में थोड़ा बहुत कृष्ण भावनामृत का उदय होता है, और यदि वह और प्रगति करता है तो आध्यात्मिक जीवन की अग्नि मनुष्य जीवन में प्रज्वलित हो सकती है। यदि अग्नि के धुएं को ठीक से नियंत्रित किया जाए तो अग्नि जल सकती है। अतः यह मनुष्य जीवन जीवात्मा के लिए ऐसा सुअवसर है जिससे वह संसार के बंधन से छूट सकता है। मनुष्य जीवन में काम रूपी शत्रु को योग्य निर्देशन में कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन द्वारा जीता जा सकता है।
बहुत अच्छा। तो जीव के तीन कोटि के आवरणों का वर्णन है शुद्ध जीव के। 84 लाख योनियों के का वर्णन किया है। वास्तव में ये शरीर जो होते हैं ना, ये 84 लाख योनियां हैं, ये क्या है वास्तव में? ये केवल आवरण है, बस आवरण, चेतना को ढकने के लिए। थोड़े योनियां ऐसी हैं जिसमें चेतना ज्यादा ढक गई है, थोड़े हैं जैसे चेतना कम ढकी हुई है, और थोड़े हैं जिसमें बहुत कम ढकी हुई है। और जब ज्यादा ढकी हुई है तो उस समय अंदर रहने वाली चीज को दिखाई नहीं देता। जैसे समझ लीजिए कि एक बल्ब है, बल्ब जानते हैं ना, 100 वाट वाला बल्ब आपके घर में जलता है ना, पीले रंग का। तो उस पर आपने तरह तरह के रंग बिरंगी कागज डाल दिए, ठीक है। तो जैसे आपने उसके ऊपर लाल रंग का डाल दिया तो प्रकाश कैसा होगा? लाल रंग का। पीला रंग का डाल दिया, पीला हो जाएगा। नीले रंग का डाल दिया, नीला प्रकाश हो जाएगा। परंतु मूल प्रकाश ना नीला है ना पीला है ना कुछ, मूल प्रकाश कुछ और ही है। तो उसी प्रकार से जैसे योनि है, जैसे शरीर है, वैसे ही चेतना आत्मा की प्रकट होती है बाहर की ओर। इसलिए कुत्ता भौंकेगा, कुत्ता भगवत गीता श्लोक नहीं बोलेगा, है ना, जो पेड़ बात ही नहीं कर सकता कुछ। तो जैसे जैसे आवरण है वैसे उस हद तक जीव की चेतना ढक जाती है। तो ये 84 लाख योनियों की व्यवस्था इस प्रकार से की गई है कि पशु योनि से ले, जो वृक्ष योनि से लेकर सारे ऊपर मनुष्य योनि तक, जो शरीर, जो आत्मा के शुद्ध अवस्था को ढकने के गहराई में कमी होती रहती है। सबसे ज्यादा ढका हुआ है वृक्ष की योनि। इसमें चेतना बहुत ज्यादा ढकी हुई है, चेतना नहीं के बराबर है। चेतना है नहीं तो पेड़ जीवित कैसे रहेगा, पेड़ उगेगा कैसे, पेड़ में फल फूल कैसे आएंगे। पेड़ भी जीवित है परंतु वो अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर सकते, उसकी विचार शक्ति नहीं है। उसकी भी भावनाएं होती हैं, पेड़ को भी दर्द होता है। प्रभुपाद जी बोलते थे कि एक वैज्ञानिक थे जगदीश चंद्र बोस, उन्होंने ये सिद्ध करके दिखाया कि पेड़ों में भी चेतना होती है और पेड़ भी अनुभव करते हैं, परंतु बहुत कम, बहुत 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 कम। ऐसे कई लोग हैं जो आधुनिक काल में खेती करते हैं या पेड़ पौधों का देखभाल करते हैं, वो जाके उसी प्रकार से अपने पेड़ों से, अपने पेड़ों से, अपने पौधों से, अपनी फसल से बात करते हैं, जैसे किसी एक जैसे घर में पालतू कोई जानवर होता है ना, वैसे उसके साथ बात करते हैं, या बच्चे में घर घर के अंदर जो बच्चा है उससे बात कर, वैसे जाके बात करते हैं, प्रेम से बात करते हैं उनसे। और इससे उन्होंने, वैज्ञानिकों ने इसका इसके लिए प्रयोग भी किया है। और जहाँ पे किसान बहुत अच्छी तरह से अपने फसलों का देखभाल करता है बड़े प्रेम से, तो फसल एकदम हरी भरी हो जाती है। फसल को भी अनुभव होता है कि ये व्यक्ति मुझे प्रेम करता है, और एकदम फल जाता है, इसका अनुभव होता है। और जहाँ पर वो केवल काटपुट की बात करते हैं तो फिर वो ज़्यादा उगता नहीं है, वो भी खुश नहीं होते उगने के लिए। एक वैज्ञानिक थे जापान के, उन्होंने एक प्रयोग किया था, ये उदाहरण मैं अक्सर देता हूँ। उन्होंने क्या किया कि पानी लिया, ठीक है, पानी अलग अलग पात्रों में रखा, अलग अलग पात्रों में। एक पानी के पात्र को अलग ले गए और उसको बहुत गालियाँ दी, किसको, पानी को, तुम कितने बुरे हो, कितने खराब हो, दुष्ट हो, ऐसे वैसे बहुत कुछ भला बुरा बोल दिया। फिर दूसरे पात्र में जो पानी था उसको अलग ले जाकर उसने ऐसे ही भला बुरा इतना नहीं बोला, परंतु प्रेम से भी बात नहीं किया, एकदम ऐसे बस बिना कोई भावना से बात किया, और दूसरे से किसी अच्छी तरह से बात किया, चौथे से जाके बहुत कड़े शब्दों से बात किया, और जाके खुद गाली गलौज किया उसके ऊपर, पानी के ऊपर। और एक उन्होंने क्या किया कि एक पानी के एक पात्र को उन्होंने बहुत मधुर संगीत सुनाया, जिसको सुन के मन प्रसन्न होता है। दूसरी जगह कुछ ऐसा संगीत सुनाया जो धड़ धड़ होता है ना, वो सब होता है, उस तरह का संगीत सुनाया, और अलग अलग आवाज़ें ध्वनियाँ सुनाई उनको। और फिर उन्होंने क्या किया, ये पानी को उन्होंने बर्फ़ में बदल दिया, वो ठंडी जगह में रख के उसको बर्फ़ बना दिया। फिर ये बर्फ़ के टुकड़ों को उन्होंने देखा, उसका विश्लेषण किया, तो जिस पानी को प्रेम से बात किया गया था और जिसको बहुत मधुर संगीत सुनाया गया था, वो जो बर्फ है उसके अंदर जो एकदम बिल्कुल सुंदर रूप उसका हो गया, क्रिस्टल्स को क्या बोलते हैं अंग्रेजी, मराठी हिंदी में क्या बोलते हैं क्रिस्टल्स को,
कण,
कण होते हैं, बहुत सुंदर रूप के होते, उसके अंदर के भी उसका आकार वगैरह बहुत सुंदर था। और जहाँ पे गाली गलौज किया था ना, तो एकदम ऐसे वैसे हो गए वो सब, कोई आकार नहीं कुछ नहीं, ऐसे वैसे हो गया। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि पानी के साथ भी यदि हम ऐसा व्यवहार करें जो चेतन नहीं है ना, फिर भी ऐसे असर होता है, तो पेड़ पौधों के साथ क्यों नहीं होगा। हम लोग तो इंसानों के बारे में भी नहीं सोचते हैं, है कि नहीं, इंसानों के बीच में भी भला बुरा बोल देते हैं, अरे तुरे करके छोड़ देते हैं। तो जानवरों के ऊपर भी बात करने से कितना असर पड़ता है। अभी गाय बैलों का देखभाल हम करते हैं, तो गाय बैलों को केवल एक यंत्र समझ के नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, गाय बैलों को भी प्रेम से बात करना चाहिए। जब जितना ज़्यादा हम गाय बैलों को प्रेम करेंगे, उतना ज़्यादा वो धीरे धीरे थोड़ा नरम हो जाएंगे और हमारी बातें मानना शुरू करेंगे। भगवान कृष्ण ऐसे ही करते थे वृंदावन में, जब भगवान श्री कृष्ण टेर कदम्ब में जाके वो वृक्ष कदम्ब वृक्ष के ऊपर चढ़ते थे और वहाँ से बांसुरी बजाते थे और सारे गायों को बुलाते थे, तो सारे गाय आ जाती थी। और भगवान का एक व्यक्तिगत संबंध प्रत्येक गाय और बैल से था, तो इसी प्रकार से हम भी जब गाय बैलों की सेवा करते हैं तो एक व्यक्तिगत संबंध होना चाहिए, प्रेम से उनका संबंध होना चाहिए। तो गाय बैलों के ऊपर पीठ में जाके थोड़ा हाथ फिराना, उनको थोड़ा दो शब्द बात करना उनसे, ये हमें नहीं सोचना चाहिए कि अरे कोई देखेंगे तो क्या बोलेंगे, सोचेंगे तो पागल है, क्या करता है, जानवर के साथ बात करता है, वेड़ा झाला का है, क्या बोलेंगे। तो ये वैदिक सभ्यता है, पशुओं के साथ भी थोड़ा अच्छे प्रेम से बात करते हैं। मुझे मेरे बचपन की बात याद है, छोटा बच्चा था मैं, और हमारी माता जो है माँ, वो खिड़की के बाहर हमेशा वो चिड़ियों के लिए वो कुछ दाने वगैरह कुछ ना कुछ रखते थे, और वो आते थे तो उनसे बात करते थे, और मैं छोटा बच्चा था, मैं बहुत हंसता था उस समय, अरे वो थोड़ी समझते हैं आप क्या बोल रहे हो, उनको उनको थोड़ी समझ में आता है, तो तुम बोल रही हो वो क्या समझता है, वो चिड़िया है ना वो कैसे समझेगी, तो समझाते वो बने नहीं, समझता है तुम नहीं समझोगे। भले हमारी भाषा ना समझता हो वो प्राणी, परंतु भाषा के पीछे जो भाव है वो अवश्य समझता है। तो इसलिए केवल भगवान ही भावग्राही नहीं है, सारे प्राणी भी भावग्राही होते हैं। तो उसी तरह से हमारे जीवन में भी हमें देखना चाहिए कि हम पशु प्राणियों के साथ में कैसे बर्ताव करते हैं, उसी तरह हम फसल करते हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, उनके साथ भी हमें प्रेम से रहना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए। और ये आप करके देखो, आप में से जो खेती करते हो या फूल उगा रहे हो, पेड़ उगा रहे हो, सब्जी उगा रहे हो, यहाँ तो गोकुलधाम में यही है ना, गाय बैल का देखभाल करना और हमारे चावल रागी वगैरह तरह तरह की चीज़ें उत्पादन करना, ज़मीन से सब्जी हो वगैरह वगैरह, तो कैसे उनके साथ प्रेम से हम बर्ताव करेंगे तो खेत भी हरा भरा हो जाएगा। क्योंकि ये चेतना है तो एक आदान प्रदान होता है। तो जब हम इस बात को नहीं जानते, केवल हमारे अंदर एक स्वार्थी भावना होती है कि हमको फसल उगाना है, चलो हमारे इसके लिए करो किसी भी तरह से उसको दबा के, वो कीटनाशक डालो इसमें और रासायनिक खाद डाल दो जिसके ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो जाएगा, तो ऐसे क्या होता है, फिर वो प्रेम जो है फसलों को भी नहीं लगता है कि ये व्यक्ति हमारी परवाह करता है, फिर वो भी थोड़ा संकुचित रूप से रह जाएंगे। लेकिन जब हमारा व्यवहार उनके साथ भी वैसे होगा तो सब खिल जाएगा, पूरी प्रकृति खिल जाएगी। उसी तरह से मनुष्यों के साथ भी हम रहते हैं, बड़े अच्छे ढंग से बात करना चाहिए। वो अरे तुरे से बात करने से क्या होगा, फिर वैसे ही सब संकोचमय सब एक स्थिति उत्पन्न होगी। तो पेड़ पौधे की भी भावनाएं होती हैं, वो भी समझते हैं आपका भाव क्या है, परंतु वो अपने भाव को व्यक्त नहीं कर सकते, उनकी बुद्धि बहुत संकुचित होती है, बहुत कम होती है, फिर भी भावना रहती है। तो पेड़ पौधों की योनि में ये चेतना उनकी सबसे ज्यादा ढकी हुई होती है। तो ये किसका उदाहरण है, जो भ्रूण आवृत हो गया है गर्भाशय से आवृत हो गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा घना आवरण है ये। फिर जब हम पशु पक्षियों की योनि में आते हैं, वो लोग अपने विचारों को भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, जैसे पशु को दर्द हुआ, गुस्सा आया, तो अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है, बैल की तरह तो वो है कि नहीं, बैल अपने भावनाओं को व्यक्त करते हैं कि नहीं, गुस्सा आया तो फिर समझ में आता है ना, तो बैल को गुस्सा आया है ना, इसलिए, और उनसे बात करेंगे भी तो चर्चा करेंगे तो तुरंत प्रतिकार करते हैं। ऐसे वैसे देखते हैं तो इनका आवरण थोड़ा कम है, बहुत घना है फिर भी वृक्षों की तुलना में कम है, और उसे ज्यादा और आगे हम बढ़ते हैं जहां आवरण और भी कम हो जाता है वो मनुष्यों के लिए है। तो मनुष्यों के लिए तुलना क्या की गई है, अग्नि धुएं से ढक जाता है, ढक जाती है, तो वहां पर ये मनुष्यों के समान है। शुरुआत में क्या होता है, जब आग लगाने जाते हो, चाहे आप पानी गर्म करने के लिए रखते हो रसोई घर में, तो पहले में क्या होता है, धुआं बहुत ज्यादा होता है और अग्नि कम होती है। फिर बाद में अग्नि प्रज्वलित रूप से जब जलने लगती है तो धुआं भी होता है परंतु अग्नि ज्यादा, तो अग्नि का प्रकाश, अग्नि की उष्णता, ये सब बढ़ जाती है, बराबर। तो ठीक उसी प्रकार से मनुष्य योनि में 400,000 प्रकार है, चेतना के स्तर है। तो थोड़ी मनुष्यों में चेतना ऐसी है जो पशु तुल्य है, मनुष्य है, दो हाथ दो पैर नाक कान मनुष्यों की तरह है, लेकिन उसकी चेतना पशुओं के समान है। तो वह ऐसे आग के समान है जैसे प्रारंभ में जलाया जाता है, जिसमें धुआं ही धुआं है और आग बहुत कम दिखाई देता है, और जो शुद्ध भक्त होते हैं उनमें धुआं नहीं, केवल आग ही है, बस वो धुआं किसे आवृत नहीं है। फिर भी जब तक ये शरीर है तो थोड़ा आवरण तो रहेगा ना, इसलिए थोड़ी धूल तो रहेगी। इसलिए पेड़ पौधों की योनियों से लेकर ऊपर मनुष्य शुद्ध भक्त की अवस्था तक ये आवरण जो है इसकी इसकी घनता जो है वो कम होती जाती है। तो हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है कि इस आवरण को पूरी तरह से मिटा लेना और जीव के सच्चे स्वरूप को प्रकट करवाना। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुनोय श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करोय उदय। क्या अर्थ है ये श्लोक का,
नित्य सिद्ध जो कृष्ण प्रेम है उसको वो अंदर रहता है एक जीव के अंदर, उसको केवल जागृत करना होता है श्रवण और कीर्तन।
नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुनोय, तो ये कृष्ण प्रेम जो है ये हमारे चेतना में हमारे हृदय में नित्य रूप से है, विद्यमान है, साध्य कबू न है। ये ऐसा नहीं कि हमें कोई कृत्रिम चीज बाहर से प्राप्त करने की चीज है कि कृष्ण प्रेम हमको कोई दूसरी जगह से लेना पड़ेगा, नहीं, कृष्ण प्रेम हमारे हृदय में है परंतु वो ढक गया है और वो आवरण को निकालना है बस। तो आवरण कैसे निकलता है, श्रवण
आदि शुद्ध
आदि श्रवण कीर्तन श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करोय उदय। श्रवण आदि मतलब श्रवण करने से, कीर्तन करने से, जप करने से, भगवान की विविध रूप से सेवा करने से शुद्ध चित्ते, फिर चित्त शुद्ध हो जाता है और ऐसे शुद्ध चित्त में फिर ये कृष्ण प्रेम का उदय होने लगता है। जैसे वो बादल हट जाता है तो पूरा सूरज दिखाई पड़ता है। तो ये भक्ति योग की पद्धति है, चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त के ऊपर मार्जन करना ताकि धूल जो भी है ये काम रूपी धूल धुल जाए। तो यो कि बाहर की चीज नहीं है जो हम डालने का प्रयास कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हम लोग भक्ति योग करते रहते हैं वैसे वैसे क्या होता है, हृदय शुद्ध होते जाता है और फिर आत्मा का स्वरूप है प्रसन्न होना, आनंद में होना, सच्चिदानंद। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगितः। तो जब हम भक्ति योग करते हैं तो मन प्रसन्न हो जाता है, इसलिए भक्त सदैव प्रसन्न रहता है, हसमुख रहता है। इसलिए भक्त को उदास नहीं होना चाहिए, भले कभी कष्ट आए भी जीवन में, आएंगे ना, भौतिक जगत में है तो आएंगे ना कष्ट, तो उदास होके बैठना नहीं चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। और जब मन उदास हो जाता है तो माला लेके बैठो, बैठो मतलब जब भी करो ऐसे बैठो और माला से जप करो, कीर्तन करो, मन फिर से प्रसन्न हो जाएगा। माया दास सदा उदास, और गोकुल धाम के कृष्ण दास बिंदास, है ना, खास गोकुल धाम के भक्तों के लिए है, बिंदास रहते हैं, कोई डर नहीं किसी चीज का, क्योंकि सब इतने अच्छी तरह से कृष्ण भक्ति करते हैं इसीलिए। और जैसे जैसे प्रभुपाद अंत में क्या बताते हैं कि जब समसिद्धि प्राप्त होती है तो अपने आप पता चलता है, क्रमशः भक्ति में प्रगति करने से अपने आप को अनुभव होने लगता है कि मैं प्रगति कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसे प्रभुपाद जी ने श्लोक तो कहा नहीं यहाँ पर तात्पर्य में, परंतु संकेत कौन से श्लोक का है, एक उदाहरण देते हैं खाने का यहाँ पर। हाँ कौन बोल रहे, हाँ बोलो बोलो बोलो, हाँ ब्रजेश, हाँ देख के भी बोलो चलेगा।
भक्ति परेशानुभव विरक्ति अन्यत्र चेष त्रिग एक काल प्रपद्य मानसे यथा श्रतश्रु तुष्टि पुष्टि शुद्ध पायो अनुभासम।
तो क्या अर्थ इसका, क्या इसका एक अपने शब्दों में अर्थ बताओ, फिर बाद में शब्द भेद करेंगे। भक्ति की तुलना किस चीज से की गई है,
खाने से,
खाने के भोजन ग्रहण करने से की प्रक्रिया से की गई है। तो अब जब हम प्रपद्यमानस्य, जो व्यक्ति प्रपद्य, प्रपद्य अर्थात शरणागत हो जाता है, शरणागति से ही प्रभुपाद जी तात्पर्य प्रारंभ करते हैं ना, और पृथु महाराज भी यही तो बोलते हैं ना, जब भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की शरण में आ जाता है तो उसका सारा अज्ञान या कपोल कल्पनाएं धुल जाते हैं और उसमें वैराग्य प्रकट होने लगता है। तो प्रपद्यमानस्य यथा अश्नुतः, तो यथा मतलब जिस तरह, अश्नुतम अश्नामी हम खाते हैं, मैं खाता हूं, तो अश्नुतः मतलब जो खाता है व्यक्ति, जो खाने वाला होता है। फिर क्या बताया अगले लाइन में, अंत में क्या है, तुष्टि पुष्टि शुद्ध अपाय। जैसे जैसे अनुघासम, जैसे जैसे एक एक घास हम डालते रहते हैं मुंह के अंदर, वैसे वैसे क्रमशः तीन चीजें होनी लगती हैं। त्रिक एक काल है, वो क्या है, तुष्टि, हम संतुष्ट होने लगते हैं, अच्छा लगता है, अरे कितना अच्छा प्रसाद खा रहे, स्वादिष्ट है, अच्छा लग रहा है। पुष्टि, भूख के कारण थोड़े कमजोर हो गए थे, अभी भोजन जाता है शरीर में, पोषण आने लगता है, शक्ति आने लगती है। क्षुद्ध अपाय, क्षुद्ध मतलब भूख, तो पहले भूख लगी हुई होती है और जैसे जैसे भोजन के को हम डालते रहते हैं, मुंह में चबाते हैं, निगल लेते हैं, वैसे वैसे भूख भी मिटने लगती है। तो ये तीन चीजें एक साथ होती हैं, ऐसा नहीं है कि पहले संतुष्ट हो जाते हैं पूरी तरह से, फिर शरीर में पोषण आने लगता है और फिर भूख मिट जाती है, ऐसा नहीं, तीनों क्रमशः एक साथ बढ़ते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से प्रपद्यमानस्य, जो व्यक्ति भगवान के शरण में आ गया है, उसके लिए तीन चीजें एक साथ हो जाती हैं। कौन से हैं वो तीन चीजें ब्रजेश कृष्ण प्रभु, पहले लाइन में बताए तीन चीजें कौन सी है, शरणागत व्यक्ति के चित्त में हो जाता है, भक्ति ही परेश अनुभव पर ईश अनुभव और तीसरा विरक्ति ही भक्ति ही परेशानुभव विरक्ति अन्यत्र विरक्ति अन्यत्र विरक्ति अन्यत्र मतलब भगवान श्री कृष्ण से अतिरिक्त अन्य चीजों से विरक्ति होना, कृष्ण से विरक्ति होने की बात नहीं होती। चैष त्रिक एक काल चेष, तो ये तीनों चीजें, एक तो भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न होना, दूसरी बात कि भगवान का अनुभव अपने जीवन में होना, और तीसरी बात कृष्ण भावनामृत से जो भी भिन्न है उससे विरक्ति उत्पन्न होना। ये तीन चीजें एक ही समय पे धीरे 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 बढ़ने लगती हैं। जैसे व्यक्ति भगवान कृष्ण के शरण में जाता है तो शरणागति शरणागत, और शरण्यम शरणार्थी, शरणार्थी शरण्यम के शरण में जाता है और शरणागति लेता है। शरण्यम मतलब जिनका शरण लिया जाता है, शरण्यम शरण शरणम शरण्यम, और शरणार्थी वो होता है जो शरण लेने के लिए जाता है, उसकी पद्धति होती है शरणागति। तो ऐसे करने से ये भक्ति अपने आप बढ़ने लगती है। और प्रभुपाद जी कहते हैं ज्ञान वैराग्य अपने आप आता है। श्रीमद् भागवत के कौन से श्लोक में यह बताया गया है कि भक्ति करने से ज्ञान और वैराग्य अपने आप आ जाता है? बहुत अच्छा, क्या अर्थ है इसका?
भगवान की भक्ति करने से, वासुदेव भगवान की भक्ति करने से ज्ञान और वैराग्य तुरंत ही आ जाता,
ठीक है, जल्दी से आ जाता है। तो वासुदेवे मतलब वासुदेव के प्रति, भगवती मतलब भगवत के प्रति, वासुदेव जो भगवान है उनके प्रति वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित है। तो जब भक्ति योग का अभ्यास करता है व्यक्ति तो जनयति आशु आशु मतलब जल्दी से, जो व्यक्ति भगवान के शरण में जाता है भक्ति योग करके, जल्दी से उसके अंदर क्या होने लगता है? आशु वैराग्यम और अहितुकी ज्ञानम। तो ये ज्ञान और वैराग्य अपने आप ही उत्पन्न हो जाता है। इसलिए भक्ति योग अपने आप में संपूर्ण है, भक्ति योग स्वतंत्र है। भक्ति योग ना ज्ञान के ऊपर निर्भर है, ना वैराग्य के ऊपर निर्भर है, ना वो योगाभ्यास के ऊपर निर्भर है, ना कोई भी अन्य भौतिक चीज के ऊपर निर्भर है। भक्ति योग अपने आप में ही सर्वश्रेष्ठ है, संपूर्ण है। तो पृथु महाराज ऐसे ही बात यहाँ पर बता रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति भगवान के शरण में जाता है तो फिर सब कुछ अच्छे गुण सारे आ जाती हैं, दुर्गुण सब मिट जाते हैं। एक बार भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेने पर भक्त कभी भी इस संसार में लौटना नहीं चाहता। फिर वो कहाँ जाना चाहता है? भगवान के धाम में जाना चाहता है। और ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। हरे कृष्णा। तो कोई प्रश्न आदि है?
मैंने भी जैसे भक्ति करते हैं तो हम बोलते हैं कि सब अच्छा अनुभव होने लगता है, लेकिन अगर किसी भक्त के जीवन में भक्ति में आने के बाद कष्टों की संख्या जैसे बढ़ती जाए तो ये किस चीज का लक्षण होता है? क्या उसे शुद्ध करने के लिए?
ये भगवान की कृपा,
कृपा
भगवान की कृपा का प्रमाण है। यस्य अहम् अनुगृणामि हरिष्ये तद्धनं शनैः। भगवान बहुत कृपा करते हैं ना उसके ऊपर, इसलिए ऐसे होता है। इसलिए कभी कभी भक्त प्रार्थना करते हैं भगवान कृपा कीजिए, पर इतनी ज्यादा कृपा भी मत कीजिए।
कई बार वो टूट भी सकता है।
भगवान उतना ही कष्ट देंगे भक्त को कि जितना उसके अंदर सहन शक्ति है। जैसे एक छात्र कोई पांचवी कक्षा में होता है तो अध्यापक पांचवी कक्षा के अनुसार ही परीक्षा देगा, वो दसवीं कक्षा की परीक्षा पांचवी के बच्चे के लिए नहीं देगा। तो इसलिए जितने हमारी प्रगति हुई है उस हिसाब से ही भगवान परीक्षा देते हैं भक्त को। हर एक को परीक्षा मिलेगी, कोई छूटेगा नहीं, भगवान के चक्की से कोई छूट नहीं सकता। पीस पीस के रगड़ रगड़ के, वैसे भी हम रगड़ के आ गए, इतने साल बीत गए हमारे, है कि नहीं। अभी भगवान के हाथ में आके रगड़ रहे हैं तो अच्छा है, कम से कम शुद्ध हो रहे हैं, फिर जाएंगे भगवान के धाम में, आज नहीं तो कल।
कई बार महाराज क्वेश्चन पेपर बहुत टफ आ जाता है, आउट ऑफ सिलेबस वो फेल हो जाते हैं, ऐसा एग्जामिनर का।
इसका मतलब है कि भगवान कुछ बताना चाहते हैं, फेल करवाना चाहते हैं फिर, ताकि हम सीखें, नम्र हो जाए। हो सकता है थोड़ा घमंड आ गया था, मेरे को सब मालूम है। भगवान बोलना चाहे सब नहीं मालूम है भाई, थोड़ा रहो।
वही प्रश्न कंटिन्यू। अभी भगवान का कृपा हम जानते हैं, भक्ति में भी चैलेंजेस जब आता है, मगर वो जो फाइटिंग स्पिरिट है वो समय में हम लोग को लगता है हमारे से ज्यादा हमारा ऑपोजिट पार्टी, मतलब हमको जो भी ये हमारा अहंकार को, हमारा क्रोध हो, काम हो, इतना रहता है, हमको पता है वो नम्रता नहीं छोड़ रहे। सो वो फाइटिंग स्पिरिट हम लोग वो समय पे खो देते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा समय में हमको वो जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो दो दिन के बाद या आधा घंटे के बाद जो होने के बाद हमको लगता है ऐसा नहीं होना था। सो एवरी टाइम ऐसे ही हम करते करते जाते रहेंगे अपराध के साथ भक्ति में, तो करना मांगना, तो ये कब तक ये हम लोग को,
जब तक हम चाहेंगे तब तक। हमको अनुभव से सीखना है ना। तो जो सही व्यवहार है अन्यों के साथ वैसे हमको करना चाहिए, जो उचित है, जैसे भक्त को, भक्त को चाहिए कि वो व्यवहार करे वैसे करना चाहिए। कभी कभी हो सकता है सामने वाला कोई गुस्सा हो जाए, इसका मतलब ये नहीं कि हम भी आके बोले तो फिर क्या होगा। मुझे बता रहे हो, मैंने भी इतने साल भक्ति की, इतने साल मैंने भी जप किया, मैंने भी एकादशी पालन किया, मुझे बता रहे हो, मुझे सब मालूम है। ये हमारा भाव रहेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन फिर भी जब कुछ सही ढंग से बोलना होता है तो बोल सकते हैं, परंतु सही ढंग से बोलना चाहिए बस। और हरेक का स्वभाव रहता है अलग अलग, किसी का थोड़ा क्षत्रिय स्वभाव रहता है, किसी का थोड़ा अलग सा स्वभाव रहता है, थोड़ा कोई नरम रहता है स्वभाव से। सब लोग अलग अलग तरह से व्यवहार करेंगे, परंतु वैष्णव मर्यादा के भीतर रहना चाहिए सबको। आई तो
साधारणतः सब लोगों को परीक्षा से उत्तीर्ण होके ही जाना पड़ता है भगवान की जो परीक्षा होती है, लेकिन फिर ये कौन से भक्त होते हैं जिनको कृपा मिलती है, जो कृपा सिद्ध होते हैं उनको ये सब परीक्षा।
कृपा सिद्ध अलग बात है, कृपा सिद्ध वो होते हैं जो बिना कुछ साधना किए वो उनको बस मिल जाता है। जैसे उदाहरण प्रभुपाद जी या भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी देखे, सुखदेव गोस्वामी का, या बिल्व मंगल ठाकुर का, कृपा सिद्ध।
परंतु साधारणतः कृपा सिद्ध ये बहुत दुर्लभ है, बहुत बहुत दुर्लभ। हमें साधना सिद्ध होने का प्रयास करना चाहिए। नित्य सिद्ध तो नहीं, नहीं। नित्य सिद्ध कौन होते हैं? जो भगवान के धाम में पहले से है। कृपा सिद्ध हम होंगे, कृपा मिलेगी तब हम सिद्ध हो जाएंगे। वो तो बैठे बैठेंगे तो और करोड़ों जन्म निकल जाएंगे और उसके बाद भी शायद नहीं आएगी कृपा। तो साधना सिद्ध मतलब हम अपने आप प्रयास कर रहे हैं। तो साधारणतः तो यही एक प्रक्रिया है, पद्धति है हम सबके लिए। कृपा कृपा के बिना हम प्रगति नहीं कर सकते। तो कृपा और स्वयं का प्रयास दोनों होना बहुत आवश्यक है।
प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक स्वभाव लेकर आता है, पिछले जन्म के कर्म के अनुसार, उसकी सुकृति के हिसाब से, और उस स्वभाव को लेते हुए भक्ति मार्ग में जुड़ जाता है। तो उसका स्वभाव कभी कभी अड़चन भी डालता है, क्योंकि कोई क्षत्रिय स्वभाव का है, कोई ब्राह्मण स्वभाव का है, कुछ अलग स्वभाव। तो इससे वो यानी ऊपर आने के लिए, और जैसे बोलते हैं कि स्वभाव बदलता भी नहीं है, मूल स्वभाव रहता ही रहता है आखिर तक, तो फिर इसको कैसे पार करके व्यक्ति
स्वभाव को शुद्ध करना है, कृष्णमय बनाकर। यदि किसी का जैसे क्षत्रिय स्वभाव है तो कृष्ण के लिए वो क्षत्रिय स्वभाव इस्तेमाल करो, अपने अहंकार के लिए नहीं। तो एक बार हुआ ये घटना, आपने सुनी होगी सबने, कि कोई भक्त प्रभुपाद जी के पास गए। वो और एक किसी भक्त के बारे में शिकायत कर रहे थे कि प्रभुपाद जी ये जो भक्त है ना सबके साथ झगड़ा करता है, क्या करेंगे। तो प्रभुपाद जी ने बोला उसको ऋषिकेश हरिद्वार भेज दो, सारे जो मायावादी लोग हैं उनसे झगड़ने दो। झगड़ा करने की प्रवृत्ति बहुत तीव्र है उसके अंदर, झगड़ा करना ही तो भक्तों के साथ क्यों करते हो भाई, तुम प्रचार करो और मायावादियों को बताओ भगवान के बारे में, कोई तुम्हारी झगड़ा करने की जो प्रवृत्ति है वो वहां पे प्रयोग कर लो, भक्तों के साथ क्यों टक्कर ले रहे हो। तो उसको केंद्रित करना है, ठीक से शुद्धिकरण करना है। बिल्कुल, वो तो भक्ति में तो मार्गदर्शक चाहिए ही चाहिए, उसके बिना तो हो ही नहीं सकता। हरि बोल, हरे कृष्णा। हाँ विजेश्वर,
जो व्यवहार के बारे में बता रहे थे, व्यवहार हम कृत्रिम रूप से कर सकते हैं। अभी हम सुनते हैं जैसे आप बता रहे थे, आज तक तो हमने वृक्षों से बात नहीं किया, बैलों को अच्छा नहीं देखा, लेकिन अभी सुना तो फिर जाके करने लगे, तो ये तो कृत्रिम आर्टिफिशियल हो।
भले कृत्रिम भी हो लेकिन करने से अच्छा रहता है। जब इसका जब स्वाभाविक नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हमको कुछ नहीं करना चाहिए तब तक। जैसे हमारे हृदय में भले नम्रता न आई हो स्वाभाविक रूप से, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि सबके साथ हम घमंड से व्यवहार करें कि भाई मेरे हृदय में अभी तक वो नम्रता आई नहीं है, तब तक मैं घमंड से ही व्यवहार करूँगा। नहीं, प्रयास भी करना चाहिए भले वो कृत्रिम क्यों ना हो। ऐसा प्रयास करते रहने से और जब तब करते रहने से अपने आप वो कृत्रिम से स्वाभाविक तक परिवर्तित हो जाएगा। तो आप सब ये अपनी सेवा में करने का प्रयास करेंगे क्या?
पेड़ों से, फसलों से, गाय बैलों से बात करना, प्रेम से व्यवहार करना,
भक्तों से भी। ऐसे नहीं कि केवल पेड़ों से बहुत मीठा बात करना, भक्तों से आके फिर कितना हमारी शक्ति क्षीण हो जाती है ना एक दूसरे में एक झगड़ा करके, वाद करके, अरे तुरे तुमने ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों किया, सारी जीवन की शक्ति खत्म हो जाती है इसी चीज में। सारे दुनिया में यही चल रहा है कि नहीं?
एक दूसरे को टांग खींचते खींचते ही सारा जीवन बीत जाता है और अच्छा काम कोई करने के लिए समय नहीं रहता फिर किसी के पास, ना वो मानसिकता रहती है। केवल एक दूसरे को खींचने के नीचे रहे हैं सब लोग, लेकिन आध्यात्मिक चेतना क्या है? एक दूसरे को खींचना नहीं नीचे, एक दूसरे को ऊपर उठाना, सबकी सहायता करना। मैं दास हूँ सबका, मैं वैष्णवों का दास हूँ, इसलिए मैं सबकी सहायता करूँगा, सबको आगे बढ़ने के लिए मदद करूँगा। ये अंतर है बाहर के जगत में और भक्ति के जगत में। तो चाहे हम पेड़ पौधे हों, चाहे सब्जियां हों, चाहे हमारे चावल रागी हो, चाहे गाय बैल हो, चाहे भक्त हो, चाहे अतिथि गण हो, चाहे परिवार के सदस्य हो, सबके साथ ऐसे अच्छी तरह से व्यवहार करना चाहिए। खाली पेट हो, भरा पेट हो, व्यवहार अच्छा ही होना चाहिए। ठीक है,
हम भौतिक जग में और आध्यात्मिक जग में
कैसे समझ सकते हैं? हमारे व्यवहार से, और हमारा व्यवहार हमारे चेतना के ऊपर निर्भर होता है। हम यदि हमारी चेतना कृष्ण भक्ति में है तो हम आध्यात्मिक जगत में है, हमारी चेतना कृष्ण भक्ति में नहीं है तो हम भौतिक जगत में है। बस सरल सी बात है।
अगर हम कभी कभी कहते हैं कि भौतिक जगत में रहना है तो यही स्टैक में रहकर भौतिक जगत पा सकते हैं, आध्यात्मिक जगत में रहना है तो यही पा के हम आध्यात्मिक जगत में रह सकते हैं। ऐसे अगर हम कुछ व्यवहार के लिए ऐसा आध्यात्मिक जगत में लिए भौतिक जगत का इस्तेमाल करते हैं तो कैसा? तब हम किसको प्रश्न पूछते हैं कि ये अभी ये जगह में क्यों लिया, तो
क्या लिया?
कुछ वस्तु भौतिक जगत में लेते, भौतिक जगत का आध्यात्मिक जगत में लेते हैं।
हाँ।
तो हमको ये नहीं करना है जगत में, तो करते हैं तो बाद में वो बोलते हैं जी भौतिक वस्तु हमें जे इधर मध्य प्रॉपर तो आध्यात्मिक जगत में, तो हम कभी कभी कुछ वस्तुओं में जी वापरतो त्यावेळी चालतो मी की त्यांना ही वस्तू आता कशी का वापरायला लागते की रिअल टाइमला वापरायला लागते असं मी सांगतो अडचणीच्या टायमाला त्यांना प्रचार करायला लागते, पण ती वस्तू आम्ही वापरतो आणि कंत्री चालतात की आम्हाला ही कशी तुम्ही वापरल्या त्यात आम्ही त्यांच्याकडे उत्तर द्यायला आमच्याकडे प्रश्न नसतो।
सर्वप्रथम आम्हाला ते ज्ञान असलं पाहिजे की प्रपंचाची कुठची वस्तू आम्ही भगवंतासाठी वापरू शकतो आणि कुठची वस्तू वापरू शकत नाही। हां ठीक आहे। आता जसं मांस आहे किंवा काही मादक द्रव्य आहे, दारू वगैरे आहे, ते आम्ही भगवंताच्या सेवेसाठी वापरू शकत नाही, ते वर्जित आहे। आणि अनेक असे वस्तू आहेत ज्यांचा वापर आम्ही करू शकतो भगवंताच्या सेवेसाठी, जसं फुलं आहेत आणि तांदूळ आहे, भात आहे आणि जर गाडी आहे, आमची वस्त्र आहेत, हां त्यांचा वापर आम्ही करू शकतो भगवंताच्या सेवेसाठी। परंतु त्याच्यामध्ये पण कुठच्या प्रकारचे वस्त्रांची आम्ही प्रयोग करू शकतो, कशासाठी आम्ही करतो, खरोखर भगवंताच्या सेवेसाठी करतो काय, ते सगळं आम्ही विचार केलं पाहिजे। आम्ही ते एक भगवंतासाठी भगवंतांचं सेवाचं नाव घेऊन स्वतःसाठी नाही केलं पाहिजे ते। हां मी भगवंताची सेवासाठी हे वस्तू विकत घेतलंय, परंतु ते वास्तवमध्ये भगवंतांच्या सेवासाठी आम्ही वापरत नाही, स्वतःसाठीच वापरतो। आम्ही टी व्ही विकत घेतो का त्याच्यामध्ये भगवंताची चित्र बघायला, पण खरोखर का वापरतो ते चित्रगीत काय असतं ते छायागीत नाही काय आमच्या लहानपणामध्ये ते असं आता काय माहीत नाही ते काय ते चित्रपटाचे आम्ही ऐकत बसतो बघत बसतो, मग तसं नव्हे। फक्त जे वस्तू भगवंतासाठी आम्ही वापरू शकतो वापरायला याची अनुमती आहे आणि आम्ही खरोखर भगवंतासाठी वापरत असेल आणि बरोबर पद्धतीने वापरत असेल तर ते ठीक आहे. जर ते वर्जित वस्तू असेल किंवा आम्ही बरोबर वापरत नाही जर असेल तर ते ठीक नाही. त्याला आम्ही युक्त वैराग्य म्हणतो. स्वतःसाठी नाही वापरायचं, भगवंतासाठी वापरायचं. युक्त वैराग्याची परिभाषा काय आहे कोणाला माहित आहे? श्लोक अनासक्तस्य विषयान् यथारम उपयुञ्जतः निर्बंधः कृष्ण संबंधे युक्तं वैराग्यं उच्यते. अनासक्तस्य विषयान् म्हणजे संसार प्रपंचाचे जे वस्तू आहे त्यांच्याप्रती आसक्त न होता आम्ही त्यांचा उपयोग फक्त भगवंताच्या सेवेसाठी करतो त्याला आम्ही युक्त वैराग्य म्हणतो. ते पण वैराग्यच आहे. तर त्यामुळे युक्त वैराग्याच्या सिद्धांतानुसार आम्हाला समजलं पाहिजे की भौतिक जगामध्ये राहून पण आम्ही कसं आध्यात्मिक जगामध्ये राहू शकतो. प्रश्नाचं उत्तर मिळालं. हरे कृष्णा. ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय. श्री गोकुल धाम की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गौर प्रेमानंदे.